समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी बराबर हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ आज मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो मुनीश। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीश। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. BJP heads for landslide victory in West Bengal Assembly elections.
और दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने को है तैयार।
In Tamil Nadu, actor turned politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on the third spot. Chief Minister MK Stalin trails.
और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF स्पष्ट बहुमत की ओर।
NDA on way to retain power in Puducherry.
जबकि विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीत ली है।
Yes, sir. Now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's rise as a global medical and wellness destination. And, well, listeners, today someone sitting thousands of kilometers away chooses India for the surgery, recovery or even peace of mind.
Dosto, kabhi socha hai aapne ki desh mein aisi kya khas baat hai ki duniya bhar se logon ko seemaen paar karke yahan kheench lati hai? घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए। चलिए आज इसी के बारे में बातें करते हैं।
Yes, and across the world today, healthcare is becoming expensive. Waiting periods are getting longer and lifestyle diseases are quietly rising. So people are asking a very practical question. Where can I get high quality treatment without draining my life savings?
और इसीलिए इसका जवाब तेजी से भारत बनता जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में कोई इत्तेफाक से कदम नहीं रख रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां इलाज हमेशा से जीवन का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम होने पर दादी नानी का काढ़ा हो या फिर सुबह सवेरे पार्कों में किए जाने वाले योग सत्र। हमने डॉक्टरों और पारंपरिक उपचारों दोनों पर ही भरोसा किया है।
Of course, and healing here has always been holistic. Now that same philosophy is reaching the world, India's strength lies in two powerful pillars. On one side, this advanced medical care, including complex surgeries, organ transplants, cancer treatment that are performed with cutting-edge technology.
और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, wellness और रोकथाम भी है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, ये ऐसी पद्धतियां हैं जो बीमारी का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसको होने से रोकती हैं। तो कैसी जगह जो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सके और आपको ये भी सिखाए कि भविष्य में उससे कैसे बचा जाए? भारत ठीक यही चीज पेश करता है।
Yes, and through the flagship Heal in India initiative, the government is positioning the country as a premier destination for integrated and holistic healthcare. It has two vibrant pillars. First is medical tourism, which focuses on curative interventions such as complex surgeries by specialized hospitals and healthcare institutions.
दोस्तों, वेलनेस टूरिज्म, दरअसल ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अन्य आयुष पद्धतियों जैसी पारंपरिक प्रणालियों के जरिए निवारक और समग्र कल्याण पर केंद्रित है और ये दोनों स्तंभ मिलकर भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम की नींव को बनाते हैं।
And let's create a simple hypothetical example. A patient from another country comes to India for heart surgery. The procedure is successful, the cost is far lower than back home. And the bonus point is that during recovery, they're introduced to yoga, breathing techniques. They're guided on diet through Ayurveda. They learn ways to manage stress. They don't leave with stitches alone. They leave with a new lifestyle.
लेकिन क्या ये एक तरह की अलग तरह की स्वास्थ्य सेवा नहीं है? और पूरी दुनिया इसे जरूर नोटिस तो कर रही है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं। असल में एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा लोग खासतौर पर मेडिकल उपचार के लिए यहां आए, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह असल में कुछ खास बातें हैं। पहली तो है क्वालिटी। भारत में कुशल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों का एक बड़ा समूह पहले से मौजूद है।
Yes, and the second reason, Munish, is that technology hospitals here follow global standards with strict safety and quality checks. And third, and this surprises many, it includes affordability. Treatments that cost a fortune elsewhere are available here at a fraction of the price.
और ये नहीं भूला जा सकता है अभिषेक कि भारत योग की जन्मभूमि और आयुर्वेद का घर है। एक ऐसी धरती जहां उपचार सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। आज इन परंपराओं को न सिर्फ सहेज कर रखा गया है बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जो लोग आयुष उपचार के लिए भारत आना चाहते हैं उनके लिए खास वीजा की व्यवस्था है, और अब तो बीमा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हैं।
एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग इंडियस लीडरशिप इन होलिस्टिक हेल्थ, एंड स्लोली द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव नोन फॉर सेंचुरीज, दैट इज हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट क्योरिंग डिजीज, इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस।
दोस्तों, एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हम कितनी बार तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं, हम कितनी बार अपनी देखभाल करने में देर कर देते हैं। हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या होगा अगर वेलनेस कोई बात का विचार न होकर हमारे जीने का एक तरीका बन जाए।
And that's the idea India is sharing with the world. And this transformation isn't random. There's a clear vision behind it. New medical hubs have been planned, places where treatment, research and wellness exist together.
और अब तो भाई अभिषेक, देखिए कि हवाई अड्डे जो हैं वो मरीजों का स्वागत करने के लिए खास मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में अपने पूरे इलाज की यात्रा की योजना बनाना आसान बना रहे हैं, सलाह मशवरे से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक। इसलिए अब ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ये पूरी तरह से आसान भी है और सुचारू भी है।
एंड टू साइट सम स्टैटिस्टिक्स मुनीश, According to the Medical Tourism Index 2020-21, India ranks 10th among the top 46 medical tourism destinations globally, 12th among the world's top 20 wellness tourism markets, 5th among the top 10 wellness destinations in the Asia-Pacific region, and India is becoming a place where the world comes to heal, a country where science meets a tradition, where recovery includes both medicine and mindfulness.
दरअसल दोस्तों, प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक उत्कृष्टता तक भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन का सिर्फ अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि वो देखभाल, करुणा और उपचार की कैसी दृष्टि के साथ इसका नेतृत्व कर रहा है जो वास्तव में परिपूर्ण प्रतीत होती है।
And now let's move to one of the most discussed topic of the day in our country today, that is the assembly elections and celebrations underway at BJP headquarters in New Delhi, following the BJP's outstanding performance in West Bengal and Assam. Our correspondent Dipendra Kumar spoke to some of the women party workers who credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and governance model for the victory in these states.
पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। असम में माँ कामाख्या ने और कलकत्ता में जय काली कलकत्ते वाली ने बंगाल का और असम का पुनरुद्धार कर दिया। असम तो ठीक था लेकिन बंगाल में बहुत ही अराजकता था। माँ काली का आशीर्वाद मिल गया बंगाल को।
ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, और यहाँ पर बंगाल की झालमुड़ी और बंगाल के रसगुल्ले जो है एक दूसरे को बांट रहे हैं। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस जीत को।
बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहूँगी कलकत्ता वाले माँ काली सबके साथ दिया है, सारे नारियों के साथ दिया है, सारे लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएंगे आप। और इस बात पे हम कहना चाहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम।
पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर भी जो है महिलाओं ने लगता है भाजपा को साथ दिया, क्योंकि 200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसे?
बंगाल भयमुक्त, रोग मुक्त, सारे आपातकाल मुक्त हो गया, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी एक महिला थी, लेकिन उनके राज्य में जितना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की शिकार हुई, बहन बेटी सर्वसार कर दिया पूरे बंगाल को। दीदी खेला ना होवे मेला, होवे मेला।
आप ये बताएं कि जीत का श्रेय किसे जाता है?
जीत का सारा वो जाता है मोदी जी को, क्योंकि एक मोदी जी है जो देश को बदल सकता है और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको देख लिया एक है तो मोदी जी है। जय श्री राम हिंदुत्व को और सनातन धर्म को, क्योंकि आज सनातन धर्म की वजह से ये बंगाल की जीत हुई है। जय हो मोदी की, जय बंगाल, जय श्री राम, जय श्री राम।
तैयारियां यहां जोरों पे है, शाम में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में लगभग 6 से 6:30 के बीच में प्रधानमंत्री यहां आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास।
यस एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु। An Indian Institute of Horticultural Research in Hesarghatta village near Bengaluru had organized an awareness campaign on a balanced use of fertilizer under Mere Gaon Mera Gaurav initiative, and the farmers were briefed by the agriculture scientist about the precise quantity of fertilizer to be used according to the soil quality and nutrient management. We have a report.
Under Mera Gaon Mera Gaurav initiative, the Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, reached out to the farmers to create awareness about the balanced use of fertilizers and encourage eco-friendly alternatives. During the intensive awareness campaign, the scientists of the research unit spoke about sustainable soil health management, scientific nutrient management, and utilization of eco-friendly alternatives to chemical fertilizers. During the technical sessions, the experts emphasized on soil testing as the foundation for precise nutrient management. The ICAR IIHR technologies such as ARCA Microbial Consortium, ARCA Decomposer, Crop Specific Micronutrient Formulations, ARCA Fermented Cocoa Pit, and ARCA Sasya Poshakras were demonstrated before the farmers. They highlighted the adverse effects of excessive chemical fertilizers and stressed on the need to adopt biofertilizers, green manures, vermicompost, and integrated nutrient management practices for sustainable agriculture. The agri-scientists showed how imbalanced use of fertilizers degrade soil health, increase costs, and reduce productivity. They also addressed the concerns raised by the visiting farmers. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
अपने दोस्त और उनकी दोस्ती, ये किसी के भी जीवन का अभिन्न अंग होती है। दोस्तों के साथ आप सुख दुख के पल साझा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई उलझनें जो परिवार में बता पानी जरा कठिन होती हैं, उन्हें भी हम लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, और यही दोस्ती दरअसल कभी कभी किसी का जीवन संवारने का भी काम करती है।
महाराष्ट्र के बीड जिले का एक शहर है अंबाजोगाई। साहित्य कला और सांस्कृतिक विरासत को आज के युग में भी इस शहर और यहाँ के शहरियों ने अच्छे से संभाला हुआ है। इसी अंबाजोगाई के कुछ मित्रों ने एक साथ आकर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ किया कि कईयों की जिंदगी बदल गई। यहाँ के एक साहित्यिक अभियान में कार्यरत अभिजीत जोंधड़े ने अपने ग्रुप की इसी पहल के बारे में आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की।
2007 में मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया। उन्होंने बताया एक छात्र बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली है, उसे अंक अच्छे मिले थे और वह पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर, उसके पिता नहीं थे और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर तय किया कि इस छात्र की जितनी भी आवश्यक आर्थिक मदद होगी हम सब मिलकर करेंगे। इसी निर्णय से मैत्री ग्रुप फ्रेंडशिप क्लब की शुरुआत हुई। शुरुआत में हम 7 दोस्तों ने हर महीने आर्थिक योगदान देकर उस छात्र की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी। उस छात्र ने भरपूर मेहनत करके पॉलिटेक्निक तो पूरा किया ही, उसके साथ ही उसने इंजीनियरिंग का भी शिक्षण पूरा किया। तब तक हमारे समूह की संख्या बढ़ती गई थी और 12 सदस्य हो गए थे। जिस उद्देश्य से हम एकत्र हुए थे वह पूरा हो चुका था। तब हमने तय किया कि इस कार्य को यही समाप्त नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही अन्य होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी है। इसी विचार से हमारा समूह और बड़ा होता गया। आज हमारे इस प्रयास से 5 छात्र इंजीनियर बन चुके हैं, 5 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं और 2 छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। वर्तमान में लगभग 70 लोग हर महीने 200 रुपए यानी सालाना 2400 रुपए का योगदान देकर इस कार्य में जुड़े हुए हैं। इस काम के दौरान हमें समाज की कई समस्याओं और लोगों की कठिनाइयों को करीब से समझने का अवसर मिला। पास के ही गांव में एक लड़की थी, उसे 10वीं में 96% अंक मिले थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई रुकने और कम उम्र में शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इस बात का हमें पता चला, हमने उसकी मदद की। पहले उसने पॉलिटेक्निक किया और आगे फिर इंजीनियरिंग पूरा किया। आज वह लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर रही है। जिन छात्रों को हमने मदद की वे आज हमारे समूह के सदस्य बन चुके हैं और स्वयं भी आर्थिक योगदान दे रहे हैं। लोग इससे अब जुड़ने लगे हैं और एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।
मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर की तरह इस मैत्री ग्रुप का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
एंड नाउ द स्टोरी फ्रॉम पानन जी। द गोवा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग स्टेट वाइड हेल्थ इनिशिएटिव टू ब्रिंग फ्री आयुर्वेदिक केयर क्लोजर टू पीपल। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
Chief Minister Pramod Sawant has launched the Health with Ayurveda hashtag checked by Doctor 2.0 campaign, a major public health initiative. As part of this campaign, free Ayurvedic health camps will be organized from 5th of May to 5th of June, offering consultations, treatments and medicines through a network of over 190 doctors across government and private facilities. Services are being delivered through district hospitals, primary health centers, 70 private clinics and 41 Ayushman Arogya Mandirs, ensuring outreach even in remote areas. The campaign focuses on early detection and management of lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity using traditional therapies. Citizens must carry Aadhaar for registration. Details of nearby centers are available on the goaonline.gov.in portal, with a dedicated helpline also in place. The government says the drive promotes a preventive, wellness-first approach to healthcare. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Bharji.
दोस्तों, कच्छ का रण जहां प्रकृति अपने अद्भुत रंग बिखेरती है, हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। इनमें फ्लेमिंगो की मौजूदगी इस इलाके को बना देती है और भी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व का उल्लेख करते हुए इन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया है। एक रिपोर्ट।
स्थानीय भाषा में सुरखब, हंज और राजवी रालाखा के बाराती जैसे नामों से पहचाने जाने वाले फ्लेमिंगो अब कच्छ की पहचान बन चुके हैं और यह गुजरात का राज्य पक्षी भी है। लंबी घुमावदार गर्दन, हल्के गुलाबी रंग के पैर, लाल रंग की विशिष्ट चोंच और आकर्षक पंखों के साथ इनकी अदाओं से पक्षी प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी में एक पैर पर खड़े रहना, धीमी चाल से चलना और उड़ान भरते समय विमान जैसी भव्यता इनकी खास पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में फ्लेमिंगो की इसी खूबसूरती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पक्षी कच्छ में पर्यावरण संरक्षण का एक सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
कच्छ की अनोखी भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना और बड़ी संख्या में खूबसूरत पक्षियों के निवास का यह अद्वितीय संगम हर वर्ष मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवानी।
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव मिशन 32% इन द 2026-27 बजट। The mission aims to increase the state's forest cover from 29.50% to 32% by the year 2030, and this step has been seen as a major move towards transforming Himachal into a green Himalayan state. We have a report.
To enhance forest cover, the state government has rolled out several innovative initiatives over the past 3 years, bringing together forest expansion, conservation, and community participation. Among these, the Chief Minister Forest Expansion Scheme stands out as a key initiative, aims at transforming barren and unused hills into green landscapes. In its very first year, plantation has already been carried out on nearly 600 hectares of barren land. Under the scheme, plantations are being undertaken through multiple projects on forest land, with nearly 60% of saplings comprising fruit-bearing species. To ensure proper care and long-term survival of these plantations, dedicated financial provisions have been made. Individuals and institutions are being provided assistance of rupees 1.2 lakh per hectare, strengthening both maintenance efforts and survival rates. The scheme is being implemented at the grassroots level through self-help groups, Mahila Mandals and youth participation. This approach is not only advancing environmental conservation but also generating employment opportunities and creating sustainable income avenues for local communities. In a further push to make green development a mass movement, the government has introduced the Green Adoption Scheme. Under this initiative, private enterprises, companies and non-governmental organizations can adopt barren forest land for plantation and conservation activities. This move promotes corporate social responsibility while ensuring active participation of the private sector in environmental protection. The cumulative impact of these efforts is steadily guiding the state towards its vision of a green Himachal. The central focus of Mission 32% in the 2026-27 budget underlines the government's commitment to achieving a balance between development and environmental sustainability. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
और दोस्तों अब बात खेल के मैदान की हलचल की। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने और मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
Yes, and moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% higher today. The Sensex gained 356 points to close at 77,269, while the Nifty rose 122 points to settle at 24,119. The broader market on the National Stock Exchange also closed in positive zone. The mid-cap 100 climbed over 0.6% and the small-cap 100 jumped 0.7%.
और दोस्तों अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर उसके बाद बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Atul Krishna Ghosh, who died on the 4th of May 1966. Atul Krishna was associated with the Jugantar Group and Anushilan Samiti. He was closely associated with the great revolutionary freedom fighter Bagha Jatin.
Atul Krishna was born in 1890 in Nadia district, now in Bangladesh. While studying in his final year of graduation at Presidency College, Kolkata, he got associated with Bagha Jatin and joined the Anushilan Samiti. He, along with Jatin, founded the revolutionary organization Pathuryaghat Abhyayam Samiti.
Following his arrest and release in the Howrah conspiracy case, Bagha Jatin suspended activities and left Kolkata in 1911 under the responsibility of Atul Krishna. As an organizer, Atul Krishna sheltered revolutionaries. Later, a few members of the Anushilan Samiti formed a new branch of the Seva Samiti under Atul Krishna Ghosh. During this time, Atul Krishna maintained contact with many revolutionaries, including Rash Bihari Bose, Gurdeep Singh, Taraknath Das, and other Kumagata Maru patriots.
At the beginning of the First World War, Atul Krishna Ghosh and Bagha Jatin tried to obtain weapons in Germany and launch a revolution against British rule. However, the British authorities became aware of the situation and attacked Balasore, where the weapons were to be delivered. Bagha Jatin was martyred during the operation. The death of Bagha Jatin left Atul Krishna shattered. He was arrested in 1924 and released after 2 years. Atul Krishna passed away on the 4th of May 1966.
Yes, and we are also remembering Pandit Kishan Maharaj, who passed on this day in 2008. He was a legendary Indian tabla maestro from the Banaras Gharana. He is widely considered as one of the finest percussionists in Hindustani classical music history. Let's listen into one of his compositions.
घराने के वादक पंडित किशन महाराज, जिन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1973 में पद्मश्री और फिर 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। हमारी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।
Yes, and we are also remembering Jyotindranath Tagore, who was born on this day in 1849. He was a central figure of the Bengal Renaissance and the elder brother of Nobel laureate Rabindranath Tagore. A true polymath, he excelled as a playwright, musician, editor and painter. He is perhaps the most celebrated for being the primary mentor who nurtured his younger brother's genius, often composing music on the piano while Rabindranath wrote lyrics to the tunes.
और दोस्तों, आज जयंती है त्यागराज की, जिनका जन्म हुआ था आज की तारीख को 1767 में तंजावूर तमिलनाडु में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की और उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ आकाशवाणी में जैसे ही हम इसकी पुरानी इमारत में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हमें दिखाई देते हैं स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, और दूसरी तरफ त्यागराज, और फिर सीढ़ियों से ऊपर एक रास्ता जाता है।
Absolutely, त्यागराज, like Munishji was mentioning, was of course born on this day in 1767, often referred to as Saint त्यागराज or Tyaga. He was a legendary composer and singer of Carnatic music. He is celebrated as one of the trinity of Carnatic music alongside his contemporaries Muthuswami Dikshitar and Swami Shastri. A prolific composer and a profound devotee of Lord Ram, he is credited with thousands of devotional compositions, primarily in Telugu and Sanskrit. Yes, and we're also remembering Audrey Hepburn, who was born on this day. She was a Belgian-born British actress and humanitarian who became one of the most enduring icons of Hollywood's golden age. Renowned for her elfin charm and sophisticated style, she rose to international stardom with a breakout role in Roman Holiday in 1953, for which she became the first actress to win an Academy Award, a Golden Globe, and a BAFTA for a single performance. Off screen, she was a dedicated UNICEF goodwill ambassador, using a global platform to advocate for children in need.
Well, in a Roman Holiday, who can forget her roaming around Roman streets on a Vespa scooter with his co-star, I mean, who resembled, if you remember, legendary Devanand,
of course.
Gregory Peck.
Right.
Yeah. और आज जन्मदिन है दोस्तों अनिल देसाई का, और भारतीय फिल्म और टेलीविजन के अभिनेता, 100 से अधिक टेलीविजन शोज और 70 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दिए, और बड़ा मशहूर हुआ था उनका ये टीवी शो खिचड़ी। तो सुनते हैं उसी से ये गीत और शायद संवाद भी यदि संभव हुआ।
महका महका दाना गम का, बहका दाना खुशी का, दाने मिल गए ऐसे खिल गए, बन गई ये जिंदगी जैसे प्यारी प्यारी खिचड़ी, लो पक गई देखो हमारी खिचड़ी।
बाबूजी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, लीजिए।
तू तो रह नहीं थे अंसा, तेरी चाय नहीं जमती सबको पता है।
Yes, and we also remembering Jyotinder Singh Jyoti Randhawa, who is a prominent Indian professional golfer who reached a career-high world record ranking of 70 in 2008 and became the first Indian to top the Asian Tour Order of Merit in 2002. Most recently, in January 2024, he won the final stage of the Legends Tour qualifying school in Turkey to secure full playing rights on the European Senior Tour.
और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो आज्ञा दीजिए हमें, यानी मुझे, मुनीश शर्मा को और हमारे साथी अभिषेक मुखोपाध्याय को, ये परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो चले आइए हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newsonair.gov.in, और हमें आप हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी सुन सकते हैं। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।